हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव आधी रात को जब घर आया तो उसने तारा के रोने की आवाज सुनी थी। उसने देखा सभी गार्ड वहां चुपचाप खड़े हैं, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा था, यहां तक कि वीर भी वहां मौजूद नहीं था। ध्रुव ने उनसे इसका कारण पूछा तो सभी गार्ड्स ने यही कहा कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ध्रुव को सब समझ आ रहा था, ये सब युग की प्लानिंग थी। युग ही चाहता था कि अगर तारा प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि ध्रुव जाए। ध्रुव ने काफी देर तक तारा को इग्नोर किया, लेकिन जब उसके रोने की आवाज आना बंद हो गई थी तब ध्रुव जल्दी से दौड़कर नीचे टॉर्चर रूम में पहुंचा। अंदर तारा को देखकर शॉक्ड रह गया था और खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाया था। तारा में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो जोर से चिल्ला सके। वो धीरे धीरे कराह रही थी और उसके पेट पर लगे घाव के स्टिचेस खुल गए थे। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी हुई थी। ध्रुव जल्दी से तारा के पास आया और उसके हाथों को खोलने लगा। सब मुझे क्रूअल कहते हैं, लेकिन कई बार डैड मुझसे ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं। तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा था, ऐसी हालत में उन्होंने तुम्हें बांध कर रखा है। डिस्गस्टिंग। ध्रुव हड़बड़ाहट में कुछ भी बोले जा रहा था। उसे एहसास तक नहीं था कि वो अनजाने में तारा की परवाह कर रहा है। तारा को उसकी बातें ठीक से सुनाई तक नहीं दे रही थीं। जैसे ही ध्रुव ने तारा को खोला, तारा का सर ध्रुव के कंधे पर था। वो तेज सांस ले रही थी। सब ठीक हो जाएगा, ध्रुव ने उसे सहलाते हुए कहा। बहुत बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, तारा ने सिसकती आवाज में कहा। ध्रुव तारा का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो उसके कंधे पर ही बेहोश हो गई थी। ध्रुव ने तारा को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से चलकर ऊपर लेकर आया। ध्रुव तारा को सीधे अपने रूम में लेकर गया था। उसने उसे बेड पर लेटाया और फिर उसके जख्मों को देखा। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसने तारा के घाव को साफ किया। तारा के बेहोशी की हालत में उसने उसके स्टिचेस को दोबारा लगाया। दर्द के मारे तारा को तेज बुखार हो गया था। ध्रुव ने उसे मेडिसिन दी और फिर एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, तुमने अपने बारे में इतनी बड़ी सच्चाई छुपा कर रखी। खुद माफिया प्रिंसेस होकर सीक्रेट एजेंट बनने की तैयारी कर रही थी। किसको धोखा दे रही थी, खुद को या पुलिस को? एक बात तो तय है, दक्ष मल्होत्रा इस बारे में नहीं जानता है कि तुम माफिया प्रिंसेस हो, वरना वो मेहर के पीछे नहीं पड़ता। वो खुली हवा में सांस ले पा रहा है तो उसे ये गलतफहमी हो गई है कि उसने जो किया उसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया। न तुम्हें माफी मिलेगी न तुम्हारे भाई को। अगले ही पल ध्रुव के चेहरे पर वही नफरत के भाव भर आए थे। उसने तारा को वहीं पर छोड़ा और कमरे से बाहर आ गया था। बाहर आते ही ध्रुव ने वीर को कॉल पर कनेक्ट किया और सख्त आवाज में बोला, दक्ष मल्होत्रा की क्या अपडेट है वीर? जैसा कि तुमने कहा था, मैंने हमारे आदमी को उसके पीछे लगा दिया है। दक्ष को यही लग रहा है कि उस हादसे का जिम्मेदार तुमने पूरी तरह से तारा को ठहराया है और उसे सजा दे रहे हो। वो बेफिक्र हो गया है जैसा कि तुम चाहते थे, वीर ने बताया। कुछ पल रुककर उसने आगे पूछा, आगे की क्या प्लानिंग है? मुझे तारा से शादी करनी है और शादी के बाद मैं पूरी माफिया की दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगा कि तारा ही माफिया प्रिंसेस है, ध्रुव ने जवाब दिया। तारा की इस दूसरी शख्सियत के बारे में वीर अब तक अनजान था। जैसे ही उसने सुना, उसे झटका सा लगा। वीर इतना हैरान रह गया था कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसके बिना कुछ बोले ही ध्रुव उसकी हालत दूर से ही समझ सकता था। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, उन तीन पड़ावों का मालिक प्रतीक रायचंद नहीं बल्कि मौलिक मल्होत्रा है। अजीब बात है, मल्होत्रा फैमिली तक इस बारे में नहीं जानती है। खैर, इसी में हमारा फायदा है। मैं चाहता हूं कि जब ये बात उनके सामने आए तब वो बस अफसोस मनाते रह जाएंगे, ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। पहले उसे तारा से शादी करने में दिक्कत थी, पर जब ध्रुव के सामने कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर इस शादी के जरिए दक्ष से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। तारा को अपने कमरे में छोड़कर ध्रुव नीचे लिविंग रूम में सो रहा था। कृषा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 5 दिन हो गए थे। उसकी हालत में अब काफी सुधार था और युग यही चाहता था कृषा अब और दिन हॉस्पिटल में ना रहे। आज युग कृषा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा रहा था। कृषा के होश में आने के बाद इन 3 दिनों में युग ने कृषा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, पर कृषा ने जिस तरह से युग का दिल दुखाया था उसके बाद से वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। ऊपर से कृषा ने उसे सॉरी भी नहीं कहा था। उनके बीच में एक अनजानी सी दीवार खींची हुई थी। डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद युग कृषा के पास जा रहा था, लेकिन सारा ने उसे रास्ते में ही रोक लिया था। सारा कब से युग से बात करने की कोशिश कर रही थी पर उसे मौका नहीं मिला था। अब जब युग अकेला था तब सारा उसे अपने साथ लेकर फैमिली के लिए बुक किए हुए प्राइवेट रूम में गई। दूसरे कमरे में आते ही सारा ने पूछा, कृषा को राणा मेंशन में ले जाना ज्यादा सही रहेगा,
ऊपर से ध्रुव की शादी की तैयारी अभी वहीं पर चल रही है। तुमने क्या डिसीजन लिया है?
हाँ, राणा मेंशन ही सही रहेगा। फिलहाल मेरे विला में ध्रुव और तारा रह रहे हैं, युग ने जवाब दिया। युग ने अचानक ध्रुव और तारा की शादी का फैसला क्यों लिया था, इस बात से वे सब अनजान थे। शब्द और सारा ने उसे इस बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन युग ने हर बार उन्हें टाल दिया था। शादी की रस्में कल शुरू होने वाली हैं। अब तो बता दो, अचानक ध्रुव की शादी मेहर के बजाय तारा से क्यों कर रहे हो?
मेहर माफिया प्रिंसेस है। अगर वो तीन पड़ाव हमारे हाथ से निकल गए तो हम पूरी तरह से माफिया के वर्ड को टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ध्रुव जिस तरह से अचानक शादी छोड़कर बीच में गया था, रायचंद फैमिली नाराज है। किसी ने उन्हें मराने की कोशिश तक नहीं की। ऊपर से अब तुम ध्रुव की शादी तारा से करवा रहे हो। सच कहूं तो मुझे वो लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं लगती है। कृषा का समझ आता है, पर तुम बिना सोचे समझे कैसे डिसीजन ले सकते हो? सारा एक सांस में बोल गई। युग ने गहरी सांस ली और कहा, रियल माफिया प्रिंसेस तारा है, तभी मैं ध्रुव की शादी उसके साथ करवा रहा हूँ। और फॉर गॉड सेक इस बारे में कृषा के सामने कुछ मत कहना। ऑलरेडी उसे ये लगता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली या प्यार से ज्यादा मेरा मकसद इंपॉर्टेंट है। इतना इरिटेट साउंड क्यों कर रहे हो?
अच्छा, तो यही वजह है जो तुम और कृषा एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो?
सारा ने सिर हिलाकर कहा।
हाँ, तो सब पता है तो पूछ क्यों रही हो?
मैंने तुम्हें सच बता दिया है। उम्मीद है कि तुम हर बार की तरह मेरे काम में टांग अड़ाने के बजाय इस बार मेरा साथ दोगी। कोई और समझे या ना समझे, तुम अच्छे से जानती हो कि माफिया को पूरी तरह अपने अंडर में लेने के लिए हमारे पास वो सारे पड़ाव होना कितने जरूरी है। युग ने गंभीर आवाज में कहा, माफिया की दुनिया से जुड़े फैसलों में वो सारा पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था।
सारा ने बिना किसी सवाल के हां में सिर हिला दिया था। उसने जवाब में कहा, ठीक है, मैं कृषा को लेकर राणा मेंशन पहुंच रही हूं। अभी तक किसी को तारा की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। माफिया में कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। ऊपर से ध्रुव के काम करने का तरीका अलग है। कोई नहीं चाहता कि वो किंग की पोजीशन हासिल करे। अगर तारा के माफिया प्रिंसेस होने की बात बाहर फैल गई तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे सब पता है, तभी सब जल्दबाजी में कर रहा हूँ। आई होप कि तुम सब संभाल लोगी, युग बोला, जिस पर सारा ने हामी भरी। जहाँ एक तरफ युग और सारा आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं कृषा के कमरे में शब्द और कृषा बैठे हुए थे। कृषा हॉस्पिटल में रहते हुए बोर हो रही थी। कब से वो युग और सारा का वेट कर रही थी ताकि वे उसे वहां से ले जा सकें, लेकिन दोनों ही गायब थे।